SBS Audio is supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ। युवा लोग सरकार से मतदान की आयु को 16 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं। एडवोकेसी ग्रुप मेक इट 16 ने आज 20 नवंबर संसद भवन के बाहर एकत्र होकर सरकार से अपील की कि वे युवा ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की अनदेखी बंद करें। इस समूह का कहना है कि 16 और 17 वर्ष के युवा राजनैतिक रूप से जागरूक हैं और वे उन सरकारी निर्णयों में अपनी भागीदारी चाहते हैं जो उनके जीवन और भविष्य को प्रभावित करते हैं। स्वतंत्र सेनेटर मोनिक रयान का कहना है कि वे मतदान की आयु कम करने के इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करती हैं। वहीं उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स ने लेबर की उस मांग को दोहराया है जिसमें प्रवास को महामारी के पहले के स्तर पर वापस लाने की बात कही गई है। ये तब हो रहा है जब गठबंधन और ग्रीन्स सरकार की छात्र संख्या सीमा नीति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। फेडरल सरकार का प्रस्तावित कानून 2025 से विदेशी छात्रों की संख्या को 2,70,000 तक सीमित करना चाहता है, जबकि इस वर्ष 4,45,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र ऑस्ट्रेलिया आए हैं। हालांकि गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या को कम करने का समर्थन करता है, लेकिन विपक्ष नेता पीटर डटन ने अंतिम समय में लेबर के प्रस्ताव को रोकने और अपनी खुद की छात्र सीमा योजना पेश करने का आह्वान किया है। दूसरी ओर ग्रीन्स इस योजना को हमेशा से राष्ट्रीय आवास संकट के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को बलि का बकरा बनाने जैसा करार देते हुए विरोध करता रहा है। रिचर्ड माल्स का कहना है कि दोनों पार्टियों ने अपनी विचारधाराओं को छोड़कर इस विधेयक को पारित होने से रोकने के लिए एक दूसरे का सहयोग किया है। दूसरी ओर इस सप्ताह एक ऐसा विधेयक प्रेषित करने की बात की गई है जिसमें लैंगिक समानता और उच्च प्रबंधन स्तर पर महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात की जाएगी और लचीले काम के घंटों को नियोक्ताओं की कानूनी जिम्मेदारी बनाने की भी बात करी गई है। ये घोषणा ऐसे समय पर आई है जब वर्कप्लेस जेंडर इक्वालिटी एजेंसी ने पाया है कि ऑस्ट्रेलिया में लैंगिक वेतन अंतर अब भी 20% से अधिक है। सीईओ के स्तर पर यह अंतर और भी बड़ा है जहां 25% तक की असमानता पाई गई है। हालांकि लैंगिक वेतन अंतर हर साल कम हो रहा है जिसका श्रेय मुख्य रूप से कार्यबल में सबसे कम वेतन पाने वाली महिलाओं की कमाई में वृद्धि को दिया गया है। लेबर मंत्री केट थ्वेट्स का कहना है कि नया कानून इस अंतर को और कम करने में मदद करेगा। वहीं ग्रीन्स की सेनेटर लेरिजा वाटर्स का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं को ये भरोसा होना चाहिए कि गर्भपात देखभाल तक उनकी पहुंच सस्ती भी हो और सुरक्षित भी। उनकी पार्टी ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे सेनेट से एक गर्भपात विरोधी विधेयक को वापस लें। ये निजी सेनेटर्स विधेयक क्वींसलैंड के नेशनल सांसद मैट कैनवन और साउथ ऑस्ट्रेलियाई लिबरल सांसद एलेक्स एंटिक द्वारा सहप्रायोजित है और ये 2 वर्षों से सेनेट नोटिस पेपर पर है। सांसद वाटर्स ने घोषणा की है कि वे 26 नवंबर को एक प्रस्ताव लाकर ह्यूमन राइट्स चिल्ड्रंस बॉर्न अलाइव प्रोटेक्शन बिल को हटाने की मांग करेंगी। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर आया है जब विपक्ष नेता पीटर डटन ने गठबंधन सांसदों से कहा है कि वे गर्भपात पर सार्वजनिक बहस से बचें। वहीं दक्षिण पूर्व क्वींसलैंड के चेरबर्ग में इंडिजिनस बुजुर्गों ने सामुदायिक नेतृत्व में सत्य कथन सत्र आयोजित किए। स्टोलन जेनरेशन के बचे हुए लोगों ने अपनी कहानियां साझा की। हालांकि नवनिर्वाचित क्वींसलैंड सरकार ने राज्य की आधिकारिक ट्रुथ टेलिंग एंड हीलिंग जांच को समाप्त कर दिया है। प्रीमियर डेविड क्रिसाफुली का कहना है कि वे इसके बजाय समुदायों के साथ मिलकर बदलाव लाने और अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, लेकिन चेरबर्ग के बुजुर्गों का कहना है कि भविष्य की ओर देखने से पहले अतीत को देखना आवश्यक है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। स्पेसएक्स ने एक और स्टारशिप रॉकेट लॉन्च किया है, जिसे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टेक्सास देखने पहुंचे। ये डोनाल्ड ट्रंप और स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क के बीच गहराते संबंधों का एक और संकेत है। लॉन्च के दौरान अंतरिक्ष यान के एक इंजन को स्पेस में सफलतापूर्वक चालू किया गया, जिसके बाद यह यान उतरकर हिंद महासागर में जा गिरा। कंपनी ने रॉकेट के बूस्टर को विशाल यांत्रिक हाथों का उपयोग कर हवा में पकड़ने की योजना भी बनाई थी, लेकिन परीक्षण उड़ान के 4 मिनट बाद ये प्रयास बिना किसी कारण बताए रद्द कर दिया गया। और अब अंत में खबरें भारत से। भारत की राजधानी दिल्ली की हवा दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे दिल्ली की आबो हवा और जहरीली होती जा रही है। शहर की हवा का लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लग गया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम करने का फैसला किया है। लगातार पिछले 8 दिनों से दिल्ली में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आज सुबह भी दिल्ली का औसत AQI 421 दर्ज किया गया। बीते दिन तो हालात और भी खराब थे, जब सुबह में शहर का औसत AQI 495 पहुंच गया था, जो कि इस मौसम में अभी तक के AQI का सबसे खराब स्तर है। दिल्ली के प्रदूषण के खतरनाक स्तर में रहने के बीच दिल्ली सरकार ने शहर में कृत्रिम बारिश कराने पर जोर दिया और सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाले इस संकट से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप की मांग की। इसी के साथ 20 नवंबर 2024 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दीजिए वैशाली को इजाजत। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।